बात है विचारने की कि मनुष्य और मनुष्य के सिवाय पशु पक्षी वृक्ष लता दूर भूत प्रेत पिशाच देवता जितने हैं पर मैं सवाल देगा तो स्वार्थ के लिए काम करना अपना स्वार्थ सिद्ध करना अपने अनुकूलता की व्यवस्था करने प्रतिकूलता को हटाने हमारे मन सा ही हो जाए ये सब न करो पड़े। मनुष्य भी अब अगर इसी में लगा तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है, ये तो पशु पक्षियों में जब भूत प्रेत हो जाए उसमें हो जाए, ये तो पिशाच हो जाए राक्षस हो जाए तो उसमें भी है। फर्क यही है कि असुर अपने स्वार्थ के लिए नाश कर देता है, राक्षस होता है दूसरों का खत्म कर देता है, खा जाता है, साथ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है राक्षस हो जाता है, थोड़ी कम रह जाता है असुर हो जाता है, उससे कम होती है पशु पक्षी प्रसादी ये हो जाता है भूत प्रेत के साथ हो जाता है। मनुष्य में ही एक ऐसी विलक्षण बात है कि अपने स्वार्थ का आराम का अभिमान का त्याग करके और दूसरों को सुखी करना, दूसरों का हित करना, सबका भला करना, ये सिवाय मनुष्य के और में है नहीं। ये स्वार्थ बुद्धि तो ऊंचे देवताओं से लेकर नीचे कीट पतंग आदि तब सब में है अपने स्वार्थ की बुद्धि। भागवत में भी आया है ये पशु बुद्धि है, किसी से बैर करना नहीं थी पशु बुद्धि दो जगह था याद है श्लोक याद नहीं है। पशु बुद्धि से किसी के साथ बैर नहीं करना, राग नहीं करना, राग द्वेष करना है इनके बसीभूत काम करना है इसको पशु बुद्धि कही है, मनुष्य बुद्धि नहीं कही। मनुष्य की बुद्धि तो स्वार्थ त्याग कर अभिमान का त्याग करके और सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका लोक और परलोक इनमें हित हो जाए ऐसी बात करना ये मनुष्यता है। ये कोई बड़ा ऊंचा दर्जा नहीं है, पशु पक्षी आदि से ऊंचा दर्जा है मनुष्य है, पर मनुष्य में मेलखपना अगर देखा जाए इसी बात है। सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब सदाचारी सद्गुणी हो जाए, सब अच्छे काम में लग जाए, दुनिया का हित करने वाले हो जाए, ये भाव होने से मनुष्यता है। तो मेरे मन में तो ऐसी आई कि हमारे जो सत्संग में आते हैं उन भाई बहनों में कम से कम ये बात तो आ जानी चाहिए ना, घर में भी दूसरों को सुख कैसे हो, अपनी देवरानी है, जेठानी है, सासू है, ननद है, जो घर में जितनी स्त्रियां हैं उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे रहे, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सत्कार अधिक कैसे हो, ऐसी चेष्टा करना बहनों को भी उचित है। घर में से बाहर भी कहीं भी जाना हो, कहीं भी रहना हो, उस गिरोह में सेवा करें, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, काम धंधा करने में मैं करूं, आराम करने में दूसरों को, आराम की जगह औरों को देना, सुख की जगह औरों को देना, छोटे बाल बच्चों को भी पढ़ना सिखाओ, सदाचार सिखाओ, सदगुण सिखाओ, उसमें कुछ शासन भी करना पड़े तो दोषी नहीं है, शिक्षा दे उसको अच्छी करेंगे जिससे वे अच्छे आदमी बन सके। तो वो शासन से ही बन सकते हैं, उनके कैसे स्वतः पढ़ने की, अच्छे काम करने की रुचि वाले कम होते हैं। मैं तो अपना विचार करूं तो बाल्यावस्था में मेरे को पढ़ाया है, पढ़ने की इतनी रुचि नहीं थी हमारी, परंतु गुरुजनों ने पढ़ाया तो पढ़ो, तो इसी बात जरूरी है कि बेटे पढ़ो तो पढ़ेंगे, ये बात तो ये गुरुजनों ने कह दिया तब काम करना है, परंतु कोई अच्छी बातें सीख रहे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये मन में नहीं। तो ये मैं देखता हूं कि ऐसे शिक्षा देना, ये बात इस वास्ते कह दी कि घर में बालक है, उनकी ताड़ना भी करने पड़े, शासन भी करना पड़े, उनके मन के विरुद्ध भी करो, तुम पढ़ाई करो, खेलो मन, उनके मन की तो खेलने की बात, तो वो मन के विरुद्ध होने पर भी उनके हित की बात है। हमारी माने तो हम तो हित ही करें, अब न माने तो हम क्या करें, तो हित की इच्छा है ये बहुत ही अच्छी बात है। मनुष्यता शरीर शुरू ही इससे ही होती है, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ राग करें सब देसी। तो इसमें कोई विलक्षणता नहीं है, इसमें अलौकिकता नहीं है, मनुष्य मात्र की ये वृत्ति होनी चाहिए, और उनमें भी जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनमें तो कम से कम ये वृत्ति होनी चाहिए कि दूसरों को सुख कैसे हो और उनको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो जाए, किस तरह से करें जिनके दूसरा हित हो जाए, तो ये आवश्यकता सब है। आप लोग सत्संग में आते हो, उसी रखते हो, एक एक सागरी आने की चेष्टा मैं देखता हूं आप लोगों में है, तो इसका असली लाभ उठाओ, मन दूसरों की सेवा करो, घर में रहो तो सेवा करो, बाहर कहीं जाओ तो सेवा करो, जहां रहो वहां ही दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, औरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों की वास्तविक उन्नति कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों का हित निवास करता है, मन में भीतर में भाव रहता है कि सबका हित कैसे हो, तो पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ को सुनाई, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं वो। तो हित बुद्धि है सबके, आदर बुद्धि, सबकी प्रशंसा, सबका आदर, सबका हित, सबका कल्याण, ये करना मनुष्य का धर्म है। मनुष्यता इससे शुरू होती है, ये अगर नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। स्वार्थ बुद्धि भरी है, अभिमान भरा है, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तो मनुष्य में जो मनुष्यपन है वो नहीं है। पशु पक्षियों के समान है वे, जैसे पशु पक्षी पिशाच भूत प्रेत आदि है उनके समान है। तो मनुष्य मात्र में चाहिए, मनुष्यों में भी सत्संग करने वाले, कथा सुनने वाले, व्याख्यान सुनने वाले, अच्छे संग में जाने वाले, उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, अधिक होती है जिम्मेवारी उस पर। हम तो वेश मात्र से साधु बन गए तो भगत पर कहते हैं तुम ऐसा करो, साधु होकर करते हो, साधु होकर, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि साधु को स्वार्थ में फंसकर दूसरों का आहुत नहीं करना चाहिए, हित करना चाहिए। ऐसे मनुष्य होकर के भी हित नहीं करते, सत्संगी होकर सत्संग में जाकर के भी अगर दूसरों के हित की बात नहीं सीखी, सेवा नहीं की, दूसरों का कल्याण करने में अपने अग्रसर नहीं हुए, तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हुआ। सत्संगी तो कैसे हुआ, सत्संग में भी ठीक नहीं हुआ। सत्संगी तई वही है जो सत के संगी हो। सत क्या है, दूसरों का हित करना ही सत है, स्वार्थ हित नहीं है, दिखता है परंतु है नहीं। वास्तव में वो चीज तो पशुओं में भी पक्षियों में है, छोटे छोटे जंतु है, उन जंतुओं में भी मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे चाहे जैसे दुख पाते रहे, कष्ट पाते रहे, परवाह नहीं करना, ये तो जंतु मात्र में है। कीट पतंग सांप बिच्छू आदि आदि नीचे नीचे जंतु है, 84 लाख तो नीचे जल कर थल कर नभ जर जल में रहने वाले जंतुओं में यही बात है, स्वार्थ की भावना। उसका दृष्टांत देते मच्छर लगाकर, मछली जो बड़ी होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, छोटे छोटे जंतु उनको खा जाते हैं, इसको मच्छर लगाकर कहते खा जाए। है जी, मत्स्य गड़ागल मारवाड़ी शब्द, और शास्त्रों में आता तिमिंगल, तिमिंगल गिरा, तिमी नामक बड़ी मछली होती है उसको बिगड़ जाए, ऐसे जंतु जल के उसको कहते तिमिंगल। और एक बार तिमिंगल गिरा, तिमिंगल को गिरने वाले गिर जाए, तो ये मारवाड़ी भाषा है, ये मत्स्य गड़ागल है, मानो सोचों को खा जाना, ये उनके स्वतः स्वाभाविक है। तो ये बात तो जलचरों में भी है, ये भी थलचरों में भी है। कुत्ता भी जाएगा कोई असंधी जगह, कुत्ता न जाएगा, अरे वो कुत्ता नीचे पर जा रही होकर दे तो खींचने वाले ऊपर आ रही होकर राजी हो जाता, मातेत बनाकर राजी होता। ऐसे दुनिया में दूसरों को मातेत बना करके राजी होते हैं तो ये मनुष्यता नहीं है। दूसरे हम नम्रता से मातेत बन जाए, शिक्षा बात आ जाए, आपसे अच्छी बात सीखे, तो उनमें सिखाने में कोई दोष की बात नहीं है, अपने को आता है तो सिखानी चाहिए। पर दूसरे मेरे ही कर्तव्य करते रहे, मेरा ही बन जाए, ये भाई क्या बताओ। हमारे साधुओं में गृहस्थों में अपने अपने संप्रदाय में ये बात हो गई कि हम अपने संप्रदाय में आ जाए, हमारे सत्संग न आवे, इनका भला कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, ऐसे दूसरों का हित अपने जिम्मे न। तो भाइयों से बहनों से ये निवेदन करना है कि आप सत्संग में आए हो तो सतनाम इसका है, त्याग संसार का त्याग और भगवान का अनुराग, ये दो बात है खास। तो संसार में स्वार्थ बुद्धि का त्याग, अभिमान का त्याग, अहंकार का त्याग, अपने पक्षपात का त्याग और दूसरों का हित कैसे हो, हमारे साथ प्रेम रखते हैं उनका चीज करना ही है, परंतु बैर रखने वालों का भी अहित कभी नहीं चाहेंगे, उनका भी हित हो। हमारे साथ चाहे बैर रखे, द्वेष रखे, हमारा अहित करे, तो भी उमा संतति यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करते हैं, ये संत का स्वभाव है। संत स्वभाव कहते हैं मन वचन और क्रिया से दूसरों के लिए, ये साधु का स्वभाव है। तो साधु स्वभाव नहीं सीखा तो सत्संग में आकर क्या सीखा, सत्संग करने वाले न करने वाले उनमें भेद क्या रहता है, भेद यही रहता है कि सत्संग करने वाले तो प्रोपहित करें, सत्संग नहीं करते हैं ऐसे सज्जन होते हैं कि दूसरों की सेवा करते हैं, तो वास्तव में सत्संग ही है वो, चाहे अभी सत्संग में नहीं जावे परंतु बीच बीच में सत का संग उनके है, तो भगवान से प्रेम करना सत्संग है और नाशवान से ऊंचा उठना ये भी सत्संग है। तो ऐसे सत्संग करने वालों में ये भाव रहना चाहिए। तो बहनों माताओं से भी कहना है कि अपने घरों में ये काम करो, और ऐसे सत्संग से होता है ऐसा हमने सुना है, गांव भर में सत्संग करने वालों की दृष्टि से ऐसा हुआ है, जो सत्संग करते हैं उनके घरों की कलह मिट गई, लड़ाइयां मिट गई, ऐसी बात हमने सुनी है भाई। तो ये कपट है, एक एक का हित लड़ाई मिट जाएगी और एक एक का स्वार्थ चाहे कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो तो लड़ाई शुरू हो जाएगी आपस में। तो अपने घरों में कलह न हो, ये कली है ना, कलयुग है, कली प्रभाव विरोध चौ हो रहा, कलु का प्रभाव है कलयुग का, जगह जगह विरोध द्वेष कलह लड़ाई झगड़ा ये ज्यादा होना और स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होना ये कलयुग है। इस कलयुग में रहते हुए दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की उन्नति देखते हैं, दूसरों के कल्याण को देखते हैं, दूसरों की मुक्ति हो जाए ऐसा भाव हम लोगों का रहना चाहिए। देखो भाई कर देना कल्याण तो हाथ की बात नहीं, अपना ही कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है, तो दूसरे का कैसे कल्याण कर रहे हैं, परंतु भाव हमारा नीचे नहीं रह जाता है, भाव तो कल्याण का ही रहना चाहिए, और भाव है उसकी इज्जत है। भगवान भी भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, भाव अच्छा लगता है वो भगवान को अच्छा लगता है, जिसके भाव है श्रेष्ठ भाव है वो भगवान को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है भगवान को, और भगवान कहते ये मेरे मददगार है, क्यों भगवान है वो सूर्यम स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए सूर्य सर्वदेही नाम मात्र से धारियों के ये सूर्य होते हैं, सूर्य दूसरा नाम है, दूसरा हित करे न करे अहित करे तो भी वो तो अपनी तरफ से हित ही करता है, उसको सूर्य कहते हैं, हित के बदले हित करे वो मित्र कहलाते हैं, आपस में मित्र होते हैं वो एक एक का हित करते हैं, परंतु सूर्य वो होते हैं जो बिना कारण ही हित करते हैं, कारण रहित दयालु भगवान को भी क्या कारण रहित, कारण बिना कारण दया करने वाले हैं, इस बात हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक भगवान और एक भगवान ये प्यारे सेवक भगत ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं, तो उनका दर्जा ऊंचा हुआ है सबसे, स्वार्थ में तो सकल से दुआएं, स्वार्थ के लिए तो मित्रता करने सभी स्वप्ने उपरूप परमात्मा ही वहां परमात्मा नहीं है, इस वास्ते परमात्म से का हित करने का भाव है, वे ऊंचे दर्जे माने गए। तो सज्जनों, भाइयों, बहनों, सत्संग में आप आते हैं, बड़ी रुचि रखते हैं, सुनते हैं, तो अपने ये बिल्कुल हृदय में धारण कर लेनी चाहिए बात कि हमारे द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो, तब तो भाई मनुष्यता है। और सत्संगी हुए आप, साधक हुए, और स्वार्थी बात केवल है और सत्संग में आते हैं तो आते हैं उतना तो अच्छा है। इतनी बात तो अच्छी, इतनी देर तक अच्छा समय बीता, अच्छी बातें सुनने को मिली, तो भी एक असर करती है, परंतु देरी है। और भीतर से भाव ऐसा ही हो कि हम ऐसा ही करेंगे, उनका जल्दी कल्याण होता है, एकदम ऐसी बात। इस वास्ते अपने तो जल्दी कल्याण हो, सुगमता से हो जाए कल्याण, ऐसी बात करना। मैंने पुस्तकें कई पढ़ी है, पढ़ाई भी की है, पढ़ाई के बाद भी पुस्तक मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। तो उन पुस्तकों से मैं बातें ली है कि, और मैं एक खोज में हूँ कि सुगमता से कल्याण कैसे हो जाए। हरेक प्राणी चाहे किसी दर्जे का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में क्यों न हो, अगर वो कल्याण चाहे तो कल्याण सुगमता से जल्दी कैसे हो जाए, ऐसी मेरी खोज रही और है अब भी। इस तरह की खोज मैं करता हूँ तो मेरी ऐसी बातें मिली है, बहुत सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, बड़ी सरलता से। लोगों में एक जमी हुई बात है कि भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, ये बड़े कठिन है। मैं कहता हूँ कठिन नहीं, ये सबसे सुगम है। ऐसी बातें मेरे को मिली है संतों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, उनकी वाणी से, ये बातें मेरे को मिली है कि बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसमें एक बात बताऊं, आप ध्यान देकर सुने। ये बात मैं बहुत बार कहता हूं, बहुत बार, और फिर भी मेरे तृप्ति नहीं हो रही है। फिर आप ध्यान दें, सांसारिक काम जैसे अपने उद्योग करेंगे तब उन्नति होगी, ये रीति पारमार्थिक रूप में नहीं है। करो तो इससे भी लाभ होगा, भगवान के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुस्तक पठन पाठन करेगा तो इन क्रियाओं से भी लाभ होगा, परंतु उनमें लाभ होने में अपना बोध, अपना त्याग, अपनी श्रद्धा विश्वास, ये मुख्य है, समझे। सांसारिक उन्नति में तो समय लगावे, क्रिया करे, जो तत्परता से उत्साह से काम करे, तो विशेष होगा। जैसे खेती कोई करता है तो खटे खूब खेत में, प्रकाश में तब से लेकर अंधेरा पड़ जाए तब तक खेत में काम करता ही रहे। ऐसे घरों में भी काम करे तो काम धंधा ज्यादा करे, उत्साह पूर्वक करे तो काम ज्यादा होगा। तो वहां करने से क्रिया की पदार्थों की मुख्यता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कि हमें इकट्ठे हुए हैं पारमार्थिक बातें कहने सुनने के लिए, इसकी उन्नति के लिए क्रिया और पदार्थ की प्रधानता नहीं है। इससे भी सहायता मिल जाएगी, मानो सहायता ले लो, परंतु प्रधानता त्याग भी है उसमें, अपना स्वार्थ, अपने अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करना। तो ये क्यों है, अब वो बताऊं सार बार। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया और पदार्थों की प्रधानता नहीं है, वो नहीं क्यों है, और संसार में इनकी प्रधानता क्यों है, इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुने कृपा करके। संसार की वस्तुएं उत्पन्न होने वाली है, उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में परिश्रम की मुख्यता है, उद्योग की काम करने की मुख्यता है। क्यों? वो पैदा होती है, तो नहीं करोगे तो पैदा कैसे होगी? परंतु परमात्मा की प्राप्ति है वो पैदा नहीं करनी है, वो तो सबका हक रखता है, सबका अधिकारी है। भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और ये सब जीव मेरे को प्यारे हैं। भगवान सूर्य है, सूर्यम सर्वभूत है, प्राणी मात्र के परम शुद्ध भगवान है। क्यों है? कि भगवान सब में मेरे हैं सब, तो अपने अपने बालकों का पालन करते हैं, माता पिता आपका आप करते हैं, ऐसे भगवान हमारे को अपना समझते हैं। हम चाहे भगवान को पहचाने नहीं पहचाने, माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, परंतु भगवान हमारे को जानते हैं। और जानते ही नहीं है, हमारा हित करते हैं, हर एक परिस्थिति में घटना में केवल हमारा हित करते हैं, हमारे हित में लगे हुए हैं। तो ऐसे परमात्मा हमारा हित करते हैं, तो उस परमात्मा की हम चाह ना करें तो केवल भाव से पहुंच जाते हैं। वहां क्रिया की प्रधानता नहीं है, पदार्थों की प्रधानता नहीं है, शरीरों की प्रधानता नहीं है, वहां भीतर के भाव की लगन की प्रधानता है। क्यों है ऐसा? कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, उत्पन्न होने वाली वस्तुएं अब नहीं है, उद्योग करने पर पैदा होगी, प्राप्त होगी, चाहे कहीं जाकर ले लें, कहीं से मंगा लें, चाहे उनमें परिवर्तन कर लें, इससे उपलब्धि होगी। पर परमात्मा को ना तो कहीं से मंगाना है, नहीं उनके लिए कहीं जाना है, नहीं उनके लिए उथल पुथल करके कुछ परिवर्तन करना है। वो तो है ज्यों का त्यों मौजूद है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में वो मौजूद है। तो उसकी तरफ तो केवल हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। वो है, संसारी वस्तु है नहीं, पैदा होगी तो परिणाम मिलेगी, और वो परमात्मा पहले से है। केवल हमारी इच्छा न होगी तो हमारे को प्राप्त हो जाएंगे। सब देश में है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी है तो भाई भविष्य में कई दिन के बाद होगा, ऐसी बात नहीं है, अब भी है, भविष्य में उसी की होती गबार तो नहीं है, होगा जब मिलेगा भाई, नहीं तो मैं कैसे लाऊं, ऐसी बात नहीं है। तो सब समय में होने से भविष्य में होगा ऐसी बात नहीं है, और सब जगह होने से उसके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सब में होने से बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और वो सबके अपने होने से वो तो अपने हैं, अपने हैं अपने। नमी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का अंश है, वो हमारे अंश ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव जीव। वो माता पिता है, सूर्य है, प्रिय है, हितेशी है, गुरु है, सब कुछ है भगवान। तो उनके सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म को अग्नाश ही तब ही, जब सन्मुख हो जाए तो पाप नष्ट हो जाए, और है जो वो मिल जाए। तो नित्य सिद्ध वस्तु के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है वस्तु का निर्माण किया जाए, वस्तु पैदा की जाए, लाई जाए, कहीं जाए, उसके लिए वो पुरुषार्थ की उद्योग की क्रिया की प्रधानता है। परमात्मा के लिए तो भाव की प्रधानता है, सब जगह मौजूद है, सब समय में है। और सज्जनों एक बात विशेष ध्यान दें, वो अपने हैं अपने, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी भी कहते हैं भगवान मेरे हैं, तो भगवान यूं नहीं कह सकते कि तू मेरा नहीं है। 16वें अध्याय में गीता के 16वें अध्याय में जहां देवी संपत्ति और आत्म संपत्ति का वर्णन है, वहां आत्म संपत्ति के वर्णन करने की समाप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे दुष्टों को आत्म योनि में गिराता हूं, आसवी योनि मापन्ना बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं, ऐसी आस योनि में आए जन्म जन्म में अधोगति जाते हैं, तब तो भी उससे भी अधोगति नरकों में जाते हैं। तो वे आस योनि में जाते हैं, फिर उनको उससे भी अधोगति में नरकों में जाते हैं। उस जगह भगवान लिखते हैं माम अप्राप्ति, माम अप्राप्ति उनते तो अधमान गतिम, मेरे को प्राप्त न होकर अधम गति को जाते हैं। जरा ध्यान दें आप लोग भाई बहन, मेरे को न प्राप्त होकर तो किसे आशीष संपत्ति का वर्णन है? क्या आशीष संपत्ति वालों को भगवान की प्राप्ति सुलभ है? क्या परमात्मा की प्राप्ति तो मेरे को प्राप्त न होकर अधम गति को जाते हैं, उसी भी अधम गति को तो न प्राप्त होकर ये कैसे कहा? ये तो वहीं कहा जाता है जहां प्राप्त एक गुंजाइश होती है, प्राप्त हो सत्यानिषेध होता है ना, मेरे को न प्राप्त होकर के। इससे सिद्ध क्या हुआ? कितने ही नीचे हो वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लड़के कितने ही कैसे हो, अच्छे और बुरे हो और भले हो, कैसे ही हो, माँ है उसके लिए सब बालक अपने, और बालक में सपूत कपूत कैसे ही हो, माँ को माँ कह सकते, माँ कहने का सबको अधिकार है। सदाचारी सद्गुणी मातृपितृ भक्त है वही माँ कहे, और जो विरुद्ध चलता है वो माँ न कहे ये नहीं है। कहना माने न माने तो भी माँ माँ ही होती। कुपुत्र हो जाए तक कोशित अभी कुमाचा न भवती, कुपुत्र हो जाता है मन कुमाता नहीं होती। मारवाड़ी कहावत है पूत कपूत हो सकता है, माइत कुमाइत नहीं होते, वे तो कुमाइत नहीं होती, माता ही। ऐसे सबके माता पिता भगवान सबको चाहते हैं, तो भगवान अपने हैं। माताओं बहनों भाइयों, भगवान अपने हैं, अपने अपने हर एक प्राणी कह सकता भगवान मेरे हैं। अब माँ के कैसे ही लड़के हो सबको ये माँ कहने का अधिकार है, माँ है मेरी माँ, ऐसा कह सकते हैं। कपूत भी कह सकते हैं, सपूत भी कह सकते हैं, ऐसे भगवान को अपना कहने का अधिकार मात्र जीव को है। और जीव समझते नहीं, मनुष्य समझते हैं, और उनमें सत्संग करने वाले विधि सारे समझते हैं, तो भगवान अपने हैं। इस बात से उसकी प्राप्ति में ये नहीं इतना उद्योग करे, इतना समय लगे तो प्राप्ति हो, और हमारे हैं रो करके माँ के समझ जाते माँ राजी हो गया पुरस्कार बेटा रो मत, ऐसे भगवान है हमारे माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माँ है। तो भगवत प्राप्ति सुगम है, सरल है, सहज है, और उसके लिए सदगुण सदगुण सदाचार की आवश्यकता है। तो स्वार्थ त्याग करके दूसरों का हित करना ये स्वाभाविक हमारे में होना चाहिए। स्वभाव में नहीं है तो सत्संग क्या किया भाई, और सत्संग करके क्या काम किया? ये प्रार्थना नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 4 जुलाई 1990 को प्रातः 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।